अब आगे देखेंगे पेज 574, फतह मक्का के बाद के सराया और उम्माल की रवानगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फारिग रहना सीखा और न किसी को फारिग रखना। मक्का फतह हुआ, आम तौर पे देखा ये जाता है कि जब एक कामयाबी मिल जाती है तो इंसान फिर उसके बाद को थोड़ी देर आराम चाहता है, छुट्टियां चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी एक के बाद एक, एक के बाद एक काम करते गए तो सराया सरियत उनकी जमा, जिसमें दूसरे सहाबा किराम जाते, यानी अल्लाह के नबी के बग़ैर जो काम हो जाए वो इसमें आता था, गोया कि आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं थी उसमें। और उमाल भेजना, ज़कात का माल कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग जाते हैं, वर्कर्स टू कलेक्ट द ज़कात, कैसे हुआ आइए इसको पढ़ते हैं। इस तवील और कामयाब सफ़र से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कदरे तवील क़याम फरमाया। इस दौरान आप वफूद का इस्तकबाल फरमाते रहे, हुकूमत के उम्माल भेजते रहे, दाईयाने दीन को रवाना फरमाते रहे, और जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखले और अरब के अंदर उभरने वाली कुव्वत को तस्लीम करने में तकब्बुर माने था, इन्हें सर नगूं फरमाते रहे। इन सब का मुख्तसर सा खाका हम आगे देखेंगे, इसमें भी सीखने की बात है। आप वापस आ गए मक्का से मदीना की तरफ, मक्का फतह हो गया अल्लाह के हुक्म से, मदीना वापस वही जगह जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर चूँकि आप अब एक अरब के अंदर हुक्मरान की हैसियत हासिल कर चुके थे तो बड़े बड़े वफद आपको मिलने आते, यानी सोशलाइजिंग भी थी दीन के नाम पे, फिर ज़कात की कलेक्शन के लिए भी लोगों को भेजते, फिर से तबलीग का काम, दावत देने वालों को भेजना, गोया कि मल्टी फंक्शनिंग थी आपकी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ जिसने सर उठाया इस्लाम के ख़िलाफ़, फिर उससे मामला भी करते देखते रहे। मसलन पहली चीज़ तहसील दाराने ज़कात, तहसील हासिल करना, टू गेट कलेक्टर, किस चीज़ के ज़कात, लोगों की ज़कात, यानी मुस्लिम हुकूमत लोगों से ज़कात वसूल करने के लिए बाकायदा एक मुरतब किस्म का मुनज़म सा निज़ाम करती थी, उसी की तरफ इशारा है। फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी के आखिर में तशरीफ़ लाए थे। 9 हिजरी का हिलाल यानी हिलाल मुहर्रम तुलू होते ही आपने कबाइल के पास सदक़ात की वसूली के लिए उमाल रवाना फरमाए, जिनकी फहरिस्त ये है। उमाल का नाम और वो कबीला जिससे ज़कात वसूल करनी थी ये साथ साथ बोला जाएगा। उयना बिन हिसन को बनू तमीम से वसूल करने के लिए भेजा, यजीद बिन अल हुसैन को असलम और गफ्फार, और अब्बाद बिन बशर या बशीर अशखली सुलेम और मुजैना की तरफ, राफे बिन मकैस जो हैना की तरफ, अमर बिन आस बनू फजारा, और जहाक या दहाक बिन सफियान बनू कल्लाब, बशीर बिन सुफियान बनु काब, इब्न लुतबिया अस्दी बनु ज़िबियान की तरफ, महाजिर बिन उमैया शहर सना, इनकी ही मौजूदगी में इनके खिलाफ अस्वद अंसी ने सना में खुरूज किया था। आप अस्वद अंसी का नाम पढ़ते हैं कि जो इसने बाद में अल्लाह के नबी के खिलाफत का या नबूवत का दावा किया था, तो उसी की तरफ इशारा। ज़ियाद बिन लबीद इलाका हज़र मौत, अदी बिन हातिम तई और बनु असद, और मालिक बिन नुवैरा बनु हंजला, ज़िब्रकान बिन बदर बनु साद की एक शाख, और कैस बिन आसिम बनु साद की दूसरी शाख, आला बिन अल हज़रमी इलाक़े बहरैन की तरफ, और अली बिन अबी तालिब इलाक़े नजरान यानी ज़कात और जिज़िया दोनों वसूल करने के लिए ये सब को नॉमिनेट किया गया। वाज़ रहे कि यह माल मुहर्रम 9 हिजरी ही में रवाना नहीं कर दिए गए थे, बल्कि बास की रवानगी खासी तखीर से इस वक्त अमल में आई थी जब मुतल्लिका कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अलबत्ते इस अहतमाम के साथ इन माल की रवानगी की इब्तदा मुहर्रम 9 हिजरी में हुई थी, और इसी से सुलह हुदैबिया के बाद इस्लामी दावत की कामयाबी की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी रहा फतेह मक्का के बाद का दौर, तो इसमें तो लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल हुए। क्या सीखा इससे? कामों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, ड्यूटीज़ को असाइन कीजिए, ख़ास तौर पे अब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं और जो काम आगे करने हैं, इसमें जितने ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना काम और करने वालों के नाम, क्या करना, कैसे करना, फिर उसका बैकअप रखना, फिर उसका हिसाब करना कराना, उतनी इंशाल्लाह कामयाबियां भी होंगी। यानी आपने चीज़ों को एक ही पिटारे में डालकर नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम लिए। इसके बाद जो सराया थे, जिस तरह कबाइल की तरफ ज़कात वसूल करने के लिए उम्माल भेजे गए, इसी तरह जज़ीरतुल अरब के आम इलाकों में अमन व अमान कायम हो चुकने के बाद या उसके बावजूद बास मकामात पर मुतद्दद फ़ौजी मुहिमात भी भेजनी पड़ी फहरिस्त है। यानी ये सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन कुछ जगह पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि फिर आपको फ़ौजियों को भेजना पड़ा। मसलन सरिया उयैना बिन हिसन फजारी, मुहर्रम 3 हिजरी सन 9 हिजरी, सन 9 में हुआ, मुहर्रम 9 हिजरी में हुआ। उयैना को 50 सवारों की कमान देकर बनु तमीम के पास भेजा गया था। वजह यह थी कि बनु तमीम ने कबाइल को भड़काकर जिजिया की अदायगी से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई अंसारी मुहाजिर या अंसारी नहीं था। उयैना बिन हुसैन रात को चलते और दिन को छुपते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि सहरा में बनु तमीम पर हल्ला बोल दिया। ये लोग पीठ फेर कर भागे और इनके 11 आदमी, 21 औरतें और 30 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिन्हें मदीना लाकर रमला बिनते हारिस के मकान में ठहरा दिया गया। फिर इनके सिलसिले में बनु तमीम के 10 सरदार आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जाकर यूं आवाज़ लगाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आओ। आप बाहर तशरीफ़ लाए तो ये लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे, फिर आप इनके साथ ठहरे रहे यहाँ तक कि जोहर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद मस्जिद नबी के सहन में बैठ गए, उन्होंने फ़ख्र व मुबाहात में मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की और अपने खतीब अत्तार बिन हाजिब को पेश किया। उसने तकरीर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीब इस्लाम हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास को हुक्म दिया और उन्होंने जवाबी तकरीर की। इसके बाद उन्होंने अपने शायर ज़िबरकान बिन बदर को आगे बढ़ाया और उसने कुछ फ़ख्रिया इशार कहे। इसका जवाब शायर इस्लाम हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हों ने दिया। जब दोनों खतीब और दोनों शायर फारिग हो चुके, तक्रो बिन हाबिस ने कहा, इनका खतीब हमारे खतीब से ज़्यादा पुरजोर और इनका शायर हमारे शायर से ज़्यादा पुरगो है। इनकी आवाज़ें हमारी आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची हैं और इनकी बातें हमारी बातों से ज़्यादा बुलंद पाए हैं। इसके बाद इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बेहतरीन तहाइफ से नवाजा और इनकी औरतें और बच्चे इनको वापस कर दिए। तो ये देखिए क्या खूबसूरत बात है कि आप लोगों के साथ मामला उनके हिसाब से करते थे। अगर कोई अच्छा मामला करता तो आप फिर उसके साथ ज़बरदस्ती जंगो जिदाल नहीं करते थे। फिर इसमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर गए और लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे, ठहरे बातें की, तो सहाबे कराम अपने दिल की बात अल्लाह के नबी से भी करते थे। और ख़ास तौर पे देखिए, जोहर की नमाज़ के बाद मस्जिद नबी में जब लोग बैठे और कुछ बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे, तो फिर अल्लाह के नबी ने भी उसका जवाब देने के लिए साबित बिन कैस को मुकर्रर किया। तो इससे पता चलता है कि लीडरशिप में कदम कदम पे फैसले करने पड़ते हैं। अगर आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं तो इसको सीखिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ योर लाइफ मेकिंग। आपका कैरियर बिल्ड भी हो या बिगड़ जाए, फैसलों पे आज आप मैं जो भी हैं, ये हमारे फैसले का ही नतीजा है ना। कभी कभी हम अपने किसी फैसले या कभी कभी हमारे माँ बाप की तरफ से किए हुए फैसले की आड़ में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं परेशानियों और दुखों में। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने मामले को वैसे ही रखा जैसे कि होना चाहिए था, और औरतों को और बच्चों को भेज दिया। ये भी बहुत प्यारा मिजाज है आपका कि आप ज़बरदस्ती लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर इसके बाद सरिया कुतबा बिन आमिर था, सफ़र 9 हिजरी में। ये सरिया तुरबा के करीब तबाला के इलाके में कबीला खसम कि एक शाख की जानेब रवाना किया गया। कुतबा 20 आदमियों के दरमियान रवाना हुए, 10 ऊँट थे जिन पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। मुसलमानों ने शब खून मारा, यानी रात को हमला हुआ, जिस पर सख्त लड़ाई भड़क उठी और फरीकैन के खासे अफराद ज़ख्मी हुए। قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 20-20 لوگوں کی بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہیں، کوئی 2 دن کی، کوئی 1 دن کی، کوئی 4 گھنٹے کی، کوئی 2 گھنٹے کی، یعنی کچھ نہ کچھ آپ اپنے ساتھیوں کو کام دیتے ہی رہتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس سے لوگوں میں ایمان بھی آتا ہے، مزید کام کرنا بھی آتا ہے۔ ان کی تو جنگیں تھیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ آج امت مسلمہ کو بھی جنگوں پہ اپنا مال یا وقت لگانا پڑے، کیونکہ جن پیسوں سے قلم نہیں خریدے جاتے پھر ان سے تیر تلوار خریدنے پڑتے ہیں۔ اگر آج ہم دعویٰ اور تبلیغ کے اوپر محنت اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سروں پر جو جنگیں مسلط کی گئی ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر اگلا تھا سریہ دحاق بن سفیان کا لابی، ربیع الاول سن 9 ہجری میں ہوا یہ غزوہ، یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہے تہ کیا۔ آج آپ کسی کو کوئی اچھی بات کہیں تو جنگ نہیں چھڑتی، بعض لوگ تو آپ سر کے سر کے بالوں کو پڑھنے لگیں گے۔ تو گھبرائے نہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے بولنے کے بات کرنے کے ایک انداز درست کیجئے، اور باقی پھر معاملات اللہ پہ ڈال دیں۔ پھر اگلا تھا سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، یہ مدلج قبیلہ تھا، ربیع الآخر میں سن 9 ہجری میں ہوا۔ انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوششیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پھر شیطان کو اور غلط کام کرنے والوں کو ٹکنے نہیں دیتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کے اور اپنی دھن کے پکے ہیں۔ پھر سریہ علی بن ابی طالب، ربیع الاول سن 9 ہجری میں ہوا۔ انہیں قبیلہ تئی کے ایک بت کو، جس کا نام قلص یعنی کلیسا تھا، ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ، 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ چھنڈیاں کالی اور پھریرا یعنی جھنڈا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلص یعنی اسی کلیسا کو ڈھا دیا اور قیدیوں اور چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے ادی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلص کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہتا کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، کیا کہا اس نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں، میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی، ادی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن اس نے پھر وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے جو کہ غالباً حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرما دیا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی ادی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ ادی کسی امان یا تحریر کے بغیر کسی بھی تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ उन्होंने कहा, नहीं। फिर आपने कुछ देर गुफ्तगू की, इसके बाद फरमाया, अच्छा तुम इससे भागते हो कि अल्लाह अकबर कहा जाए। क्या तुम अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ जानते हो? यहाँ से नोट कीजिए, दलाइल खूबसूरत तरीके से सामने जो शख्स है उसको देख कर बात करते थे अल्लाह के नबी। खैर, आपने फरमाया, यहूद पर अल्लाह के गज़ब की मार है और नसारा गुमराह हैं। उन्होंने कहा, मैं यक रुखा मुसलमान हूँ। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फरते मुसर्रत से दमक उठा। इसके बाद आपके हुक्म से इन्हें एक अंसारी के यहाँ ठहराया गया और वह सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे। इब्ने इसहाक़ ने हज़रत अदी से भी ये रिवायत भी की है कि जब अल्लाह के नबी ने अपने सामने अपने घर में बिठाते या बिठाया तो फरमाया, ओ अदी बिन हातिम, क्या तुम मजहबन रकूसी ना थे? अदी कहते हैं, मैंने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम अपनी कौम में माले गनीमत का चौथाई लेने पर अमल पैरा नहीं थे? यानी 25% जो उधर टैक्स था या ज़कात थी कह ले। मैंने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, हालांकि तुम्हारे दीन में हलाल नहीं। इससे नसारा की जो तब्दीलियां थी दीन में और अपनी मर्जी की कमी बेशियां थी उसका जिक्र भी आपको मिल रहा है। खैर, ये कहते, मैंने कहा, हाँ कसम बखुदा, इसी से मैंने जान लिया कि वाकई आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, क्योंकि आप वो बात जानते हैं जो जानी नहीं जाती। मुसनद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदि इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। मैंने कहा, मैं तो खुद एक दीन का मानने वाला हूँ। आज भी लोग कहते हैं, हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना, हमें भी तो ये पता है ना, और हमारा भी मसलक है और हमारे भी सब कुछ, यानी तकाबुल शुरू होने लगता है। आपने फरमाया, मैं तुम्हारा दीन तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैंने कहा, आप मेरा दीन मुझसे बेहतर तौर पर जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या ऐसा नहीं कि तुम मजहबन रकूसी हो और फिर भी अपनी कौम के माल का चौथाई खाते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, ये तुम्हारे दीन की रूह से हलाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मुझे सरनगू हो जाना पड़ा। यानी अल्लाह के नबी की ये बातें इसको यकीन दिला गई कि आप सच्चे नबी हैं। इसी तरह सही बुखारी में हज़रत अदी से मरवी है कि मैं खिदमत नबवी में बैठा था कि एक आदमी ने आकर फाके की शिकायत की। आप देखिए कि कैसे आम तौर पे लोग आकर आपसे बात करते थे। फिर दूसरे शख्स ने आकर राहज़नी की शिकायत की। आपने फरमाया, दी तुमने हीरा, एक जगह का नाम है, देखा है? अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देख लोगे कि हौदच नशीन औरत, यानी एक पालकी में या कह लीजिए कि अपनी सवारी के ऊपर बिठाए किसी जगह चीज़ में बिठाई हुई औरत हीरा से चलकर आएगी, खाना काबा का तवाफ़ करेगी और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम किसरा के ख़जाने फ़तह करोगे? और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि आदमी चुल्लू भर कर सोना या चांदी निकालेगा और ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो इसे कबूल करे, तो इसे कोई कबूल करने वाला ना मिलेगा। इसी रिवायत के आखिर में हज़रत अदी का बयान है कि मैंने देखा कि हौदच नशीन औरत हीरा से चलकर खाना काबा का तवाफ़ करती है और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं, और मैं खुद इन लोगों में था जिन्होंने किसरा बिन हुरमस के ख़जाने फतह किए। और अगर तुम लोगों की ज़िंदगी दराज हुई तो तुम लोग भी वो चीज़ देख लोगे जो नबी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि आदमी चुल्लू भर सोना या चांदी निकालेगा। देखिए, एक एक बात नहीं सच हो रही। और ये जो बीच में दो दफ़ा लफ्ज़ है ना, रकूसी मज़हब, तो बेसिकली रकूसी मज़हब क्या था? ईसाई और साबी मज़हब के दरमियान एक तीसरा मज़हब था। यानी ये कोई एक नई ही चीज़ थी। तो इन सारी बातों को पढ़कर सुनकर क्या लगा कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सामने रख के उन चीज़ों को लेकर चलना है, और जो चीज़ें इस वक्त आपके मेरे सामने हैं इनको अपने मुताले में, अपने गौर व ख़ौज़ में रखने ते हुए इस चीज़ की नियत और ख्वाहिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी मेहनत करने वाला बना दे, दीन के लिए जद्दोजहद करने वाला बना दे। और अब इसके आगे तो वो टॉपिक शुरू होगा जो वाकई फ्रेश माइंड के साथ सुनने वाला है, ग़ज़वे तबूक, जो कई दिन तक चलेगा। पूरी सूरत तौबा और कुछ हिस्सा अनफाल का भी आपको इसमें याद आ जाएगा। दुआ कीजिए कि ये एक एक चीज़ अल्लाह ताला हमारे हक़ में हुज्जत बनाए और हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।